इसी तरह तफक्कुर के बारे में एक और चंद अकवाल बोलूंगी, अगर लिख सकें लिखें, ना लिखें तो कोई बात नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उमर सानी कहा जाता था, कहते हैं कि गौर व फिक्र अफजल इबादत है। फिर हसन बिन आमिर कहते हैं कि मैंने बहुत से सहाबे कराम से सुना, वो सब ये फरमाते थे कि ईमान का नूर और रोशनी तफक्कुर है। हज़रत अबू सुलेमान दुर्रानी कहते हैं, मैं घर से निकलता हूँ तो जिस चीज़ पर मेरी निगाह पड़ती है, मैं खुली आँखों देखता हूँ कि इसमें मेरे लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है और इसके वजूद में मेरे लिए इबरत हासिल करने का सामान मौजूद है। हज़रत सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि गौर व फिक्र एक नूर है जो तेरे दिल में दाखिल हो रहा है। वहब बिन मंबा कहते हैं, जब कोई शख्स कसरत से गौर व फिक्र करेगा तो हकीकत समझ लेगा, और जो समझ लेगा इसको इल्म सही हासिल हो जाएगा, और जिसको इल्म सही हासिल हो गया तो वो अमल भी ज़रूर करेगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक बुज़ुर्ग का गुज़र एक आबिद और जाहिद के पास हुआ, जैसी जगह पर बैठे हुए थे कि उनके पास एक तरफ कब्रिस्तान था, सोचिए वहाँ कौन होते हैं, इंसान, इंसानों की लाशें, और दूसरी तरफ घरों का कूड़ा कबाड़ पड़ा था, यानी वही सारी चीज़ें जिन पर सारा दिन मरते हैं, एंड पे वो ट्रैश कैन में जाती हैं। गुजरने वाले बुज़ुर्ग ने कहा, दुनिया के दो खजाने तुम्हारे सामने हैं। खजाना कह रहे हैं इन गंदी चीज़ों को, एक इंसानों का खजाना जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, और दूसरा मालो दौलत का खजाना जो फजलात और गंदगी की सूरत में है। ये दोनों खजाने इबरत के लिए काफ़ी हैं। क्या मतलब है कि अगर हकीकत पहचानी है ना इस दुनिया की, तो रेस्ट रूम में गंदगी को देख लो, खाने की हकीकत पहचाननी है तो टॉयलेट को देख लें, और पहनने ओढ़ने की हकीकत पहचाननी है तो चीथड़ों को देख लें जो कई साल के बाद फिर घर में काम के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। यानी ये है असल चीज़ों की एंड। अब्दुल्ला बिन उमर अपने कल्ब की इस्लाह और निगरानी के लिए शहर से बाहर किसी वीराने की तरफ निकल जाते और वहाँ पहुँच कर कहते, अईना अहलुक, कहाँ हैं तेरे बसने वाले? फिर खुद ही जवाब देते, कुल्लु शैइन हालिकुनिल्लाह। अच्छा, ये कुरान पाक की आयत है कि हर चेहरा हलाक होने वाला है अल्लाह की ज़ात के सिवा। इसी तरह तफक्कुर के ज़रिए आखरत की याद अपने कल्ब में ताज़ा करते। बिशर हाफ़ी ने फरमाया, अगर लोग अल्लाह ताला की अजमत में तफक्कुर करते तो इसकी मासियत और नाफरमानी ना करते। ये नोट कर लें, पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि हर गुनाह के पीछे ये जज्बा छुपा हुआ है कि अल्लाह की अजमत का एहसास दिलों पे नहीं बैठा, वरना क्या ये बात होगी कि किया तूने मताए गुरूर का सौदा, क्या छोड़ के क्या लेते हैं। एक तरफ ये सारी चीज़ें रख लें, दूसरी तरफ दुनिया के हीरे मोती डायमंड्स रख लें, अपने सारे जज्बात रख लें, आपको चीज़ों की असल समझ में आने लगेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ज़ईफुल खिलकत आदमी, तू जहाँ भी हो खुदा से डर और दुनिया में एक मेहमान की तरह बसर कर, और मसाजिद को अपना घर बना ले, और अपनी आँखों को खौफे खुदा से रोने का, और जिस्म को सब्र का, और कल्ब को तफक्कुर का आदि बना ले, और कल के रिस्क की फिक्र ना कर। यह आखिरी जुमला लिख लें, क्योंकि हम में से बहुत सारों ने कल के रिस्क की फिक्र में आज अपनी भूख ख़त्म की हुई है, कल क्या होगा। तो ये है वो तफक्कुर जिससे आज के इंसान गाफिल हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें इसकी तौफीक दे। ऐसा दिल असल में 24 घंटे का मोमिन बनता है, वो भटकता नहीं है। खुशी मिली, अल्लाह ने दी, गम मिला, अल्लाह ने दिया, सदमा मिला, अल्लाह के हुक्म से हुआ, मेरे गुनाहों की वजह से हुआ, ना वो इंसानों से उलझता है, ना झगड़ता है, और ना वो अपने आप को बड़ा बनाता है। और ऐसे बंदे के दुआन से फिर ये दुआएं निकलती हैं जो एक मोमिन के अकीदे का इजहार हैं कि रब्बना इन्नका मन तुदखिलन्ना रफ़क़द अख़ज़ैतहु। वो दुनिया की रुसवाइयों को नहीं रोता, लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे, कपड़े अच्छे नहीं पहन के गया शादी में, खाना अच्छा नहीं खिलाया, वो कहता है ये सारी बातें छोटी हैं, कल की रुसवाई से बचाना। ये चीज़ें फिर इंसान को रुलाती हैं। फिर वो इन न समय न मुनादियाँ युनादिल ईमान की पुकार पे कबूल कर लेता है कि हाँ हमने किया। फिर दुआ निकलती है, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह कर क्या लिया, अभी थोड़ी नेकियों में बहुत बड़े बड़े गुनाह, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। वक़फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़ना मल अबरार, अल्लाह के साथ ताल्लुक करते करते रसालत के मुकाम पर आ जाता है बात करता हुआ कि रब्बना वातिना मा वातना ला रुसुलिक, अल्लाह जो रसूलों से तूने वादे किए थे फतह और नुसरत के, तू हमें भी दे। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामत इन्नका ला तुख़लिफुल मीआद, और अल्लाह ताला क़ियामत के दिन रुसवा ना करना, तू वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। नतीजा क्या निकला, दुखे दिल से, तड़पते दिल से, अल्लाह की बड़ाई को जानने वाले के दिल से दुआएं निकली। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, पस कबूल कर ली उनके रब ने उनकी बातें, एक भी नहीं छोड़ी, सारी कबूल कर ली। उलुल अलबाब की दुआएं जो तफक्कुर के बाद अल्लाह से गहरे ताल्लुक के नतीजे में ज़ुबान पे आईं, अल्लाह ने उस पे कलमे माफ़ी फेर दिया, कबूलियत का कुन कह दिया कि फरिश्तों इसकी सारी दुआएं ले लो। कुछ नहीं कहा क्या कबूल किया, बस फस्तजाब लहुम, सब कुछ कबूल कर लिया, सब मान लिया, और साथ ही कह दिया कि अन्नी ला उदियु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, हम किसी का अजर नहीं ज़ाया करते, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द हो, चाहे वो साथ भी नबी वक्कास हो जो उहद के मैदान में अल्लाह के नबी का दिफा कर रहे हैं, और चाहे वो फिर उमारा या नुसैबा हो कि जो मैदान उहद में अपनी हैसियत से जख्मियों को देखभाल कर रही थी और बहादुरी के जौहर दिखा रही थी। फिर औरत और मर्द का झगड़ा ख़त्म हो जाता है, फिर ये नहीं बात दिल में आती कि औरत नेकी करेगी तो छोटी नेकी है, इसकी कदर नहीं, और मर्द करेगा तो बड़ी नेकी है, ये कुरान मर्द पढ़ाएंगे तो औरतें नहीं पढ़ेंगी, और ये होगा वो नहीं होगा। कहा क्यों झगड़ते हो, औरत और मर्द की डिस्क्रिमिनेशन में क्यों पढ़ते हो, बादुकुम मिम बाद, ये बास बास में से है, हर मर्द एक औरत के बतन से पैदा हुआ है, और हर औरत को पैदा होने के लिए एक मर्द की ज़रूरत पड़ी, कोई इन दो चीज़ों को अलग कर सकता है, हरगिज़ नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि जो ऐसी बहसों में पढ़ते हैं वो असल मकसद से दूर हैं। आज इंसानियत को क्या तोहफे दिए हमने, इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है, औरतें नीची हैं, इनको मार पड़ती है, इनके शौहर चार शादियां करते हैं। कभी आप असल दीन के साथ इन बातों का जोड़ देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हीरे की अंगूठियों के अंदर कोई कांच का एक मोती लगा दे, कोई ताल्लुक ही नहीं इन चीज़ों का दीन से, जिसको आज बड़े बड़े फोरम्स पे डिस्कस किया जाता है। असल जो चीज़ है वो क्या है कि अल्लाह के लिए हर उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती है। इसीलिए आगे फरमाया फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम, पस वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर गए और अपने घरों से निकाले गए, व उज़ू फ़ी सबीली, और तकलीफ़ दिए गए मेरे रास्ते में। लफ़ सबीली को गौर से देखी और रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना ले, ये या किसके लिए, ये मालिकुल मुल्क अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अलवदूद के नाम की बात है कि मेरे रास्ते में तकलीफ़ दिए गए। वक़ातलू व कुतिलू, लड़े और मारे गए, क्या होगा मैं ज़ाया कर दूंगा, हरगिज़ नहीं। लाउकफ़िरन्नान्हुम सय्यातिहिम, अलबत्ता ज़रूर दूर कर दूंगा उनकी बुराइयाँ, पिछली ज़िंदगी की भी और इन नेकियों के करने के दौरान भी जो इनसे ख़ताएँ होंगी, मैं अपनी रहमत से इनको माफ़ कर दूंगा। क्यों पूछते हैं उसको? आप देखिए कि असल बात पता क्या होती है कि बंदे का दिल मिल जाए। आप ज़रा सोचें, मैं छोटी सी मिसाल दूंगी ताकि इन आयात को हम साथ ही समझ लें। एक खातून वो हैं जो आपकी दोस्त हैं, और कोई मर्द है तो वो किसी मर्द का तसव्वुर कर सकता है, आपका दिल मिला हुआ है उनके साथ, बचपन की दोस्ती है या हम ख्याली है या कुलीक हैं, सो ऑन। जब आपका उससे दिल मिल जाता है ना, कई बार आपको उसकी कोई बात बुरी लगती है कि नहीं लगती, तो कहते क्या हुआ, मेरी दोस्त ने कही है ना, कई बार उसके हाथों आपका कोई नुकसान हो जाता है, चीज़ टूट गई, कुछ कहा वो नहीं कर सकी, सो ऑन। आप कहते कोई बात नहीं, ये मेरी दोस्त है, कोई उसके बारे में बात करे, आप कहते खबरदार अगर तुमने बात की, ये मेरी दोस्त है। और अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, खुदा न खास्ता उस दोस्त के बारे में आपके दिल में मलाल आ गया, दिल खट्टा हुआ, तो आप उसके पत्ता तोड़ने को भी महसूस करेंगे। अब यहां से इस बात को समझिए, अल्लाह और बंदे के ताल्लुक के लिए, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, लेकिन ताल्लुक बिल्लाह को समझने की बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लाह सुभान तआला को हमारी बातें नहीं देखनी, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे हज हम करेंगे ताकि अल्लाह हमें अपनी दोस्ती में ले ले, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने बताया। क़यामत के दिन जो चीज़ देखनी है ना अल्लाह ने, वो ये देखनी है कि फ़रिश्तों ये मेरा बंदा था कि नहीं था, ये मेरा बंदा था। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला देखो फलां दिन सोता रह गया, इसने फजर लेट पड़ी, सारी रात काम कर रहा था, लड़ लड़ के फरिश्ते, अल्लाह कहेगा छोड़ो ना, अब ये मेरा बंदा है, गम ना करो, देखो इसने उठ के पढ़ ली थी ना। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला वो चल रहा था उस दिन, ठोकर लग गई, इसकी नज़र पड़ गई किसी पे, छोड़ दो फरिश्तों, ये मेरा बंदा है। जो बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है ना, अल्लाह सुबहान ताला फिर उसकी कदरदानी नहीं करता। वरना दुनिया में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसी कोई नेकी कर ली है कि कल क़यामत के दिन क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरी नेकी लेके मुझे आगे जाने की इजाज़त दे दे। असल जो पैगाम है ना सूरत आले इमरान का, हमें वो कहे कि तुम अल्लाह के तारुफ से मारूफ हो जाओ, दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते के लिए कबूल कर ले। ये गुलामी मिल जाए, ये मुलाजमत मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, बस एक दफ़ा ये मिल जाए, अल्लाह मैं तेरे घर के दरवाजे पे बैठ के आने वालों की जूतियाँ सीधी कर दूंगा, लेकिन खुदा के लिए तू मुझे अपना काम करने वाला रख ले। इस रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, उज़ू फ़ी सबीली, अल्लाह ने तो पहले कह दिया अल्लाह उदी अमल आमिल मिनकुम। देखिएगा पहले अमल के ज़ाया ना होने की बात है और अब अमल बताए जा रहे हैं। आप लोग माशाल्लाह चूंकि पहली दफ़ा बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ना, मुझे पूरा शऊर है कि कुछ बातें अभी आपको नहीं समझ आ रही होंगी क्योंकि आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। पहली दफ़ा नई चीज़ को देख के होवे तो बंदे का दिल ही खुलता है। और मैं सोचती हूँ कुरान जब हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं ना, बस वो तो हैरान होता है बंदा, मुँह खुलता है, हाय ये भी ये भी ये भी है, सोचा भी नहीं था। लेकिन इसको जो जज़्ब कर जाते हैं ना, फिर हर अगली दफ़ा पढ़ते हुए आपको कुरान का एक नया एंगल समझ आता है। इस आयत में क्या लिखा हुआ है, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, बात ख़त्म, पीछे से बात हो, कुछ नहीं बताया क्या, आगे अब नई बात शुरू हो रही है। इन अन्नी लाउदी अमल आमिल मिनकुम, भाई सोचा जी कौन से अमल की बातें कर रहे हैं। हाँ ये हो सकता था अन्नी लाउदी दुआ दायन, किसी दुआ करने वाले की दुआ कबूल ना करता, पीछे से अगर अब जोड़ें अमल की कौन सी बात है। अल्लाह ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं अमल नहीं ज़ाया करूँगा, मर्द हो या औरत। अब अमलों की बात है, कौन से अमल, नंबर एक फल्लसी नहाजरू, जिन्होंने हिजरत की। ये हिजरत क्या होती है, देखिए कल की हिजरत वो थी जिसमें इलाके छोड़े जाते थे, घर छोड़े जाते थे, मक्का छोड़ा तो मदीना मिला, मक्का छोड़ा तो हबशा में गए। लेकिन हर दौर की हिजरत फ़र्क होती है। एक हदीस का खुलासा है कि जाहिदु अहवा अकुम कमा जाहिदु आदा अकुम, अपनी ख्वाहिशों के साथ इस तरह जिहाद करो जैसे अपने दुश्मनों के साथ जिहाद करते हो। क्या पता चला हिजरत क्या है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। अल मुहाजिरु मन हाजरा, एक रिवायत का खुलासा है, असल मुहाजिर वो है जो हर उस चीज को छोड़ दे जिससे अल्लाह नाराज हो। असल ये हिजरत है कि अपनी जिंदगी से हर उस चीज को चुन चुन के निकाल दो जो तुम्हें मालूम हो गया कि अल्लाह को प्यारी नहीं है। और इसमें वक्त लगता है। असल बात है कि मुहाजिर जब तक अपने आप को मजलूम ना समझे तब तक अल्लाह की मदद होती है। जब मजलूमियत का शिकार हो जाते हैं ना, हाय अब ये भी छोड़ना पड़ रहा है, ये भी पाबंदी, फिर नमाज, फिर रोज़े आ रहे हैं, इतने लंबे इस साल के रोज़े, बस ये रोना धोना शुरू है ना तो वो नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। बस ये कह दो कि जो रास्ते में आएगा छोड़ना है। कभी आपने बच्चों को एक खेल खेलते देखा होगा जिसको हर्डल रेस कहते हैं, देखी हुई है, हर्डल कहते हैं रुकावट को उर्दू में, इसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो हैंड रेस करें। रुकावटों वाली दौड़ होता क्या है कि कुछ चीज़ें रख देते हैं रास्ते में ना, कुर्सी रख दी, थोड़ी तो मेज़ रख दिया, कोई आप समझें कि बॉक्स रख दिया, और लोगों को कहा जाता है भागो, और जो रास्ते की हर्डल्स हैं ना उनको उठाते जाओ, वो उठाते जाते हैं और भागते जाते हैं, और जो सबसे पहले पहुँच जाए आगे वो जीत जाता है। अल्लाह का रास्ता एक हर्डल रेस है, हम सब के रास्ते में हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, इन रुकावटों से उलझना है, अपने ही नाखून टूटेगा, इनको देख के पीछे पलट जाना है, महरूम रह जाएंगे, करना क्या, इन हर्डल्स को दूर करते जाओ। ये हर्डल्स फिर कई किस्म की होती हैं, मादी किस्म की बहुत सारी हैं जो दिखती हैं, सामने नज़र आ रही होती हैं, तागूत कह लें, दौलत माल कारोबार ये वो, कुछ ऐसी चीज़ें जो तरगीबात की सूरत में सामने आती हैं, जो इनको हटाएगा वो अल्लाह के पास भाग के पहुंच जाएगा। इसी तरह कुछ हर्डल्स नफ्सियाती किस्म के होती हैं, साइकोलॉजिकल, आदात के साथ उसका ताल्लुक होता है, अखलाकियात के साथ ताल्लुक होता है, किसी को कुछ आदात हर्डल्स होती हैं, देर से सोने की आदत है, देर तक सो रहे हैं नहीं उठ रहे, ये हर्डल है, अल्लाह कहते हैं गिराओ इसको। बहुत खाने की आदत है, भूखे नहीं बैठ सकते, बहुत बैठना नहीं आता, ये हर्डल्स हैं। لوگ مختلف رویوں میں مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے ونر کون ہو, جیتے گا کون, جو کوشش کر کر کے ہرڈلز کو گزارے گا, اور جو پیچھے کھڑا ہو جائے نو سوری آئی گیو اپ, ختم, میں نہیں کر سکتا, تو کیا اس کا نام کسی بھی دوڑ میں آئے گا؟ جو بھاگتے رہتے ہیں نا وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر پہ آتے ہیں نا کھلاڑی, جو شروع میں کہتے نہیں میں نہیں کھیل رہا, اس کا تو نام زیرو میں ہوگا. اللہ کے راستے میں ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا, یہ ہمارا نفس ہے. باہر نظر آنے والے جو خدا ہوتے ہیں نا, وہ یہ بڑے خوبصورت رنگین دل فریب کرسٹل کے, چاندی کے, سونے کے, یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا اندر کا طاغوت اور وہ میرا نفس ہے. اور یہ نفس بندے کو اس کی سوچ کے مطابق حملہ کرتا ہے. کسی بندے کی طبیعت میں لالچ ہوتا ہے نا تو اس کو لالچ کے راستے سے دکھاتا ہے, کسی کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے نا تو اس کو کنجوسی کے راستے سے اللہ کے راستے سے روکتا ہے, کسی کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے تو اس کو غصے کے راستے سے ڈر لگاتا ہے, کوئی لوگوں سے بہت ڈرتا ہے اس کو لوگوں کے ڈر کے راستے سے ڈراتا ہے, کسی کی کمزوری اس کی برادری ہوتی ہے اس کو برادری کی صورت میں بن کے دکھاتا ہے. بڑا جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا, یہ نفس اتنا سمجھدار ہے, اتنا عقل مند ہے کہ کبھی غلط جگہ پہ حملہ نہیں کرتا, وہ آپ کی اسی چیز کو لائے گا. بس اگر الحمدللہ اس ہال میں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کا ہرڈل فرق ہے, اور وہ کیا ہے جو آپ اندر سے ہیں, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین پہ جس بت کو سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے وہ کیا ہے, انسان کا نفس. پھر اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ فلذین ہاجروا, مجھے پتا ہے تم کہاں سے چل کے آئے ہو, تمہاری زندگی پہلے سے کیا تھی, تم کتنی برائیوں میں تھے. ایک ہے جو صرف دور دور سے برائیوں کو چکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی دیندار فیملی سے ہوتا ہے, اور ایک وہ ہے جو پورا انڈلج ہوتا ہے برائیوں میں, گناہوں میں, بالکل ایسی فیملی سے تعلق ہوتا ہے جہاں کبھی کسی نے نماز اور قرآن کبھی نہیں کہا. اب دو نکلنے والے ہیں, سوچیے گا, ایک گھٹنوں تک پانی میں ہے اور ایک جو ہے وہ کندھوں تک ہے, دونوں نکل کے آئے, آنے والوں نے کیا کہا, یہ دو ہیں جو اللہ کی طرف آئے ہیں, دونوں کو برابر نمبر دے دو, یہ ایک ہی وقت پہ آتے ہیں, ان کے سائن ان شیٹ پہ بالکل ایک ہی ٹائم لکھا ہوتا ہے, لیکن اللہ تو ایسے نہیں کرتا. کیوں کہ انی لا اودی عمل عامل منکم, اللہ کو پتا ہے کہ ایک تھوڑی مشکلات سے نکل کے 8:30 پہ پہنچ گیا, اور ایک بڑے بڑے دریا عبور کرتا ہوا, سمندر عبور کرتا ہوا 8:31 پہ پہنچا ہے. آپ کی سائن ان شیٹ کہے گی کہ پہلا فرسٹ ہے, دوسرا سیکنڈ ہے, اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کا درجہ پہلے سے زیادہ ہے. ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ٹرن کہاں سے لینا ہے. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. عموماً تین لائنیں ہوتی ہیں نا جانے کی, روڈز ہائی ویز پہ جب ہوتے ہیں, ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے فرسٹ, سیکنڈ وہ ہوتا ہے جو بٹوین چلنے والے ہیں, اور تھرڈ وہ ہوتے ہیں جو سلو چلیں گے اور پلس ایگزٹ لیں گے. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کسی ہائی وے پہ چل رہے ہیں, ہر گاڑی فرق ہے نا, ایک ادھر ہے فرسٹ ٹریک, تیز بھاگ رہے تھے, نفس کی رغبتیں, دنیا بھاگ تھی, یسارعون فی الکفر, یسارعون فی الدنیا, یسارعون فی المال, یسارعون فی الرشتہ دار برادری, بھاگ رہے تھے. کچھ دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ اچھا کرو, وہ ان کی زندگی میڈیم تھی, کچھ دین بھی کچھ دنیا بھی, یہ چلتے رہے. ایک ادھر جو پہلے تھے نا وہ کون تھے, جو بالکل ہی محفوظ تھے, سپیڈ تھوڑی تھی دنیا کے لیے, بس گزارے کا لے رہے تھے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو روڈ ہے نا, بالفرض یہ نافرمانی کی روڈ ہے, کفر کی روڈ ہے, دنیا کی روڈ ہے, اور آپ نے یہاں سے اب نکلنا ہے, ایگزٹ لینا ہے آخرت کی طرف, جنت کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. آپ اگر امیجینیشن میں اس چیز کو لا سکیں تو آپ بتائیں کہ کس کا ایگزٹ لینا زیادہ آسان ہے, پہلی والے کا, دوسرے کا, یا تیسرے کا؟ سب بول دیں پہلے والا. کوئی رکاوٹ ہے اس کے رستے میں, اس کو انڈیکیٹر دے کے پیچھے مڑنا پڑے گا کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی, اس کو اپنی سپیڈ کم کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں, کچھ نہیں, آرام سے چپکے سے لے لے گا. چلیے دوسرے درجے پہ لائیے جو مڈل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے کچھ پرابلم ہے نا, سپیڈ تو الحمدللہ میڈیم تھی, تھوڑی اور کم کر لے گا, انڈیکیٹر دے گا, پیچھے دیکھے گا کہ بس ایک ہی لین چینج کرنی ہے. اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے سب سے مشکل امتحان ڈرائیور کا ہوتا ہے جب وہ لین چینج کرتا ہے, حادثے زیادہ تبھی ہوتے ہیں, مس انڈرسٹوڈ کیا, گاڑی دور دکھی قریب تھی, एकदम शॉर्ट लगा, ब्रेक लगी, हाँ बहरहाल ये गुजरेगा। लेकिन उस शख्स का क्या कहेंगे जो 100 की स्पीड पे था, अंधाधुंध भाग रहा था इस दुनिया के पीछे, कभी किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने टोका ही नहीं, उसके लिए कितने खतरे हैं। पहली चीज़ उसको अपनी स्पीड हल्की करनी है। आप उसको कहें ना फौरन मोड़ो, क्या होगा, दो और लाइनों की गाड़ियों को ओवरटेक करेगा, गाड़ी तेज स्पीड से मुड़ेगी, गाड़ी उलट जाएगी। उसका काम क्या है कि पहले ऐसे लोगों को स्लो डाउन करो, स्पीड स्लो प्लीज़ केयरफुल, फिर इंडिकेटर दो। ये इंडिकेटर वैसे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, अगर पहले ही लोगों को इंडिकेटर दे देना मैं बदलने लगी हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ, मेरी लाइन बदल रही है, तो वो सारे आपको डरा देंगे, अरे नहीं 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 क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग करना कराना कुछ होता है कि नहीं, पहले ही पूरे खानदान में शोर मचा देते हैं, बस 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 मैं अब ये करने लगी हूँ, बस मैं पर्दा कर रही हूँ। अल्लाह के बंदो, ये बताने की बातें थोड़ी है, आप शोर मचाएंगे ना लोग कभी नहीं आने देंगे, पुलिस को बुला लेंगे, खुदा के लिए इसको रोको, ये हमारे आगे आ रहा है। इसका तरीका क्या है कि स्लो डाउन, वेरी कूल काम, अल्लाह से मदद, अल्लाह मुझे हादसे से बचाना, पीछे से बचाना, आगे से बचाना, फिर एक इंडिकेटर, फिर दूसरी लेन में लाएं, फिर दूसरी के बाद तीसरी, और मुनासिब मौका देख के एग्जिट ले लें। ये रियायत देनी पड़ती है, फल्लज़ीना हाजरू, ओवरनाइट चेंज नहीं आती। और ये किताब है जो बंदे को बता रही है कि एग्जिट लेना का है। अब आप कहते हैं कि ये तो बहुत रिस्क है, हम नहीं लेते, तो ना लेंगे, जिस रोड पे चल रहे हैं उसी पे पहुंचेंगे ना। तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है जो हिजरत करता है। फर्स्ट टाइम जहाँ मैंने ह्यूस्टन में एक क्लास ली, तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स में से है, शहर की मॉड स्कॉट औरत, और उनके मियाँ डॉक्टर थे, और डॉक्टर्स में से भी जो सबके बड़े होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और यानी जिसको कहें कि इज्जत दौलत माल खूबसूरती घर की बांधी थी। अल्लाह ने उनका दिल जोड़ा, और मैंने उस औरत लड़की को देखा है, सबसे पहले वो आके बैठती थी हमारे, हम लोगों का 9 o'clock का टाइम होता था स्कूल खोलने का, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के 7:30 या 8 जो भी होता है उसके बाद आती थी, आधा घंटे के करीब वो बाहर स्कूल के गाड़ी में खड़ी होती थी, क्योंकि जिसको आना है उसको तो वक्त पे आना है, और वो इस पर इतनी खुश थी, कहती थी मैं सबसे बेहतरीन सबक इस वक्त याद करती हूँ, ये मेरा अपना वक्त है। खुद आती थी, उसकी अम्मी और उसकी सास। जब ये मिसाल कभी मैंने वहाँ दी तो वो सब के बीच में बरमला कहती थी कि मैं थर्ड लेन में से आने वाली हूँ, और अब इस वक्त आपको पता है कि वो कहाँ काम कर रही है। अल्लाह उसको इस और तौफीक दे, इस्तकामत के साथ वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ लगी हुई है। हर बंदा आपकी मस्जिदों में नहीं आएगा दीन सीखने, हर बंदा आपके मदरसों में भी नहीं आएगा, लोग तो बाहर से डर जाते हैं, चाहे अंदर कोई पाबंदी हो ना हो, लोग बाहर खौफ खाते हैं, वो अब उनको पढ़ा रही है। तब वो बहुत जलती थी अपनी दोस्तों पे, सहेलियों पे, क्योंकि जितनी दुनिया फराख होती है ना उतनी भाग भी ज़्यादा होती है, तो वो कभी बहुत कुड़ती थी, तो मैं उसको एक उसका नाम लेके कहा करती थी, मैं कहती थी आप गम ना करें, ये लोग आपसे पढ़ेंगे, ये इधर नहीं आएंगे हमारे पास, ये आपसे पढ़ेंगे, क्योंकि शायद इनको लगता होगा कि हमारे पास तो हर तरह के लोग आ रहे हैं तो कुछ है, तो वो हंसती थी मैं पढ़ाऊंगी। और अब जब भी मुझे मिलती है वो ये जुमला उसकी अम्मी भी बोलती हैं कि आपको कैसे पता चला था, और अल्लाह ने कितनों के किबले दुरुस्त कराए। टाइम लगता है, लोगों को खुदा के लिए मोहलत दें, मत लोगों के सर पे सवार हो जाएं कि चलो चलो चलो। फिर इस हिजरत के रास्ते में कभी उखरिजू मिन दियारी हिम वाली कैफियत भी होती है, घर से निकालना पड़ता है, निकलते हैं, कुछ लोग तो रूठेंगे, कुछ को तो नाराज करना ही पड़ेगा, ये देख लें कि किसके किसकी खुशी के लिए किसको नाराज कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ जो लोग दीन पे नहीं आते क्या लोग उनसे बहुत खुश हैं, जब तक हम दीन की जिंदगी से जरा दूर होते हैं क्या आप कह सकते हैं मेरे खानदान का हर बंदा मुझसे खुश है, मेरी दोस्तें सारी खुश है, नहीं, तो कितनी प्यारी है वो नाराजगी जो अल्लाह के रास्ते में मोल ली जाए। बंदा मोमिन उलझता नहीं, कोशिश पूरी करता, टकराव ना हो, हादसा ना हो, फिर भी लोग निकालेंगे, चलो भाग दो, गेट आउट, निकलो हमारी महफिलों से, कल तक तुम टॉप लिस्ट पे थे, अब तुम्हारा नाम निकल गया इस लिस्ट से। अब जब ऐसे हालात होते हैं ना कि कल तक तुम हरफन मौला थे, शम्मा महफिल थे, दिस एंड दैट, तो अब कोई बुलाता नहीं, तो अकेले में जाके लोग रोते हैं, हाय देखो पहले तो फिर भी कुछ दावतें थी, कुछ थी, कोई सालगिरह थी, लोग फ़ोन करते थे, अब तो कोई मुझे बुलाता ही नहीं, लोग अब मुझे इग्नोर करते हैं, कहा गम ना करो, उज़ू फ़ी सबीली, मेरा रास्ता है, देखो तो सही रास्ता किसका है, असल ये ना देखो कि तकलीफ़ें क्या आ रही हैं, ये देखो किसका रास्ता है, इसको छोड़ना चाहते हो। वकातलू वकुतिलू, दो सूरतें हो सकती हैं, लड़ना भी पड़ता है कभी, यानी स्ट्रगल असाब की जंग होती है, बस दफ़ा इंसान गम खाता है, क्या हो रहा है, लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे क्यों मना कर रहे हैं, मैं इनको क्या कह रही हूँ, मैं खुद ही नमाज पढ़ रही हूँ, किसी को तो नहीं कह रही, लेकिन ये लड़ाई की कैफियत है, और कभी कभी तो खुती लू की कैफियत होती है। आप कहते अंदर से आई एम डेड, आई एम बस ख़त्म, स्टॉप, मैं अंदर से ख़त्म हो गई हूँ, मैं मुखालफत बर्दाश्त करके ख़त्म हो गई। अल्लाह कह रहे हैं क्यों गम करते हो, जिस चीज़ पे तुम्हारा हौसला टूट रहा है ना मेरे रास्ते की मुश्किल पे, वो तुम्हारे लिए खैर बनने वाली है। कैसे, लअुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, ये तुम्हारी सय्यिआत का कफ़ारा बनेगी। तुम्हें ये चुभने वाली बातें ना मिलें तो तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे बनेगा। तुमने बचने के बावजूद भी जो कुछ ना कुछ साइन तोड़े, कुछ ओवर स्पीडिंग की, कहीं तुमने कुछ किया, कोई ट्रैक तोड़ा, तो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ़ करेगा। और ये इतना बड़ा ख़जाना है। देखिए अल्लाह के रास्ते में आने वालों को जो मुश्किलात आती हैं ना, वो अल्लाह के रास्ते से ज़्यादा प्यारी हो जाती हैं। इसीलिए सहाबे कराम कहते थे 40 दिन के अंदर अंदर अगर कोई मुश्किल नहीं आती थी तो हम गम खाते थे कि हमारे रब ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह पाक करके लाना चाहता है। क्योंकि वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, और अलबत्ता उनको दाखिल करेगा उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो जन्नत बड़ी प्योर है, वहाँ कोई बंदा सय्यिआत के साथ दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह का काम करने वाले को वैसे ही अल्लाह बेखौफ कर देता है, बेखौफ। जैसे अब आजकल आप हुए में ना, सिर्फ एक ही गम में टेस्ट आने वाला है, यही गम है कि समर में कैसे पढ़ेंगे बच्चों के साथ, लेकिन बाकी गम दूर होते हैं। अल्लाह जब ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर देता है ना अपने रास्ते में आने वाले को, तो फिर छोटे छोटे गम देता है इस रास्ते की मुश्किलात के नतीजे। हर मुश्किल को सीने से लगाएं, अल्लाह तेरा शुक्र है मुसलमानों, अल्लाह तेरा शुक्र है 5 दफ़ा नमाज पढ़ रही हूँ दिन में, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, मुसलमान तो हूँ, हूँ तो तभी तेरे रास्ते में सताई जाती हूँ ना, तो बस तू मुझे उस जन्नत में जाने वालों से ना निकालना। वल्ला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार सवाबं मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से सवाब है। ये क्या हुआ, अब तो सारी ज़िंदगी हिजरतें करते रह गए, अमल करते रह गए, और एंड पे आ गई बात के सवाब तो अल्लाह की तरफ से है, होना क्या चाहिए था, ये तुम्हारे अमाल का सवाब है, उसका बदला का नहीं, तुम्हारे अमाल हैं कहाँ इस काबिल। बस ये मुबारक हो कि उसने वो टूटे फूटे ही कबूल कर लिए हैं। वो चेक करने वाला जो मार्क्स था ना, वो बड़ा नरम था, वो लीनियट था, तुम्हारा एग्जामिनर बड़ा सॉफ्ट हार्टेड था, उसने तुम्हारी वो कमियां कोताहियां तुम्हारे टूटे फूटे सारे कबूल करके तुम्हें ओके कर दिया। कभी किसी का वीज़ा लगता देखा करें, ख़ास तौर पे उन मुल्कों का जहाँ जाने की ख्वाहिश होती है, जब उनकी स्टैम्प लगती है ना पासपोर्ट पे, कहते हैं हाय हुरा, फ़ोन पे हाथ जाते हैं, लग गया वीज़ा, हालांकि ना भी टिकट लिए, वो सोचते हम पहुँच गए वहाँ, ख्याल में पहुंचे हुए। उस बंदे का क्या हाल होगा जिसको अल्लाह कह दे के वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार सवाब मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नस सवाब, अल्लाह से सवाब मिलेगा। असल वो है कदरदान, उसकी नजरों में कबूलियत करवा लो, और इस रास्ते में जितनी मुश्किलात आए तो उतना खुश हो। देखिए आप के घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे से फितरी तौर पे आपको मोहब्बत है, आपकी जुबान पे जब नाम आता है उसका आता है। मसलन अब 2 बच्चों का नाम ले लें, जैद और बकर। जैद पानी देना, जैद तकिया देना, जैद जरा मेरे पाँव दबा दो, बताइए जरा जैद के लिए ये खुशी का मुकाम है कि रोने का। अगर तो वो उलूल अलबाब में ना, तो वो कहेगा मेरी माँ को मेरे से मोहब्बत है ना, तभी मुझे पुकारती है। यह समय मैंने एक बच्चे को जवाब दिया था जिसको ये बड़ा गिला था कि मेरी माँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, सारे काम मुझे कहती है, मेरा ही नाम लेती है। तो मैंने उसको कहा कि ये बताओ कि आप हर वक्त किसका नाम लेते हो, अपनी दोस्त का, अपने दोस्त का ना, तो माँ को आपसे प्यार ही बड़ा है, आप अपनी माँ के दिल में बसते हो, वो आपको पुकारती। कहता अच्छा, आई डिडंट थिंक इन दिस वे, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। तो आप जिस तरह अपने उस बच्चे का नाम लेते रहते हैं ना जो आपके दिल में है, अल्लाह भी अपने ऐसे बंदे को याद करता रहता है, कभी मुश्किलात में कभी आजमाइशों में। दुआ करें कि बस आफियत के साथ जन्नत में पहुँच जाए। एक मौके पे कुछ बड़े अच्छे साथी थे, तो वो बैठ के बातें कर रहे थे, मुझे जन्नत में ये चाहिए, कोई कह रहा था मैं वाइट महल लूँगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। तो एक बड़ी प्यारी हमारी साथी हैं, तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह के बंदो मैं सच बताऊँ, मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ, मुझे जो देता है वो दे दे, नहीं देता दे दे, बस मुझे गम ये कि मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ। हम सब की भी यही तलब हो। اب اس سوچ کے ساتھ صرف اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.